पढ़ाई के अलावा भी इनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी।
डेढ़ साल की तरह नहीं कि उनको किसी भी चीज में पूरी क्षमता से झोंक दिया जाए,
तो खुद को तनाव में ना ले।
इनका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और इन्हीं बच्चों का ध्यान देना पड़ता है।
बिगिनिंग का जो सेशन होता है उसमें वो लोग लाइटली लेते हैं,
ये रिविजन के लिए जितना टाइम मिले उतना कम होता है।
वो स्ट्रेस को हवा ना बनाए, अपने
बायोलॉजिकल क्लॉक को करेक्ट रखना।
मार्च अप्रैल का महीना, इसे परीक्षाओं का मौसम कहें या त्योहारों का, क्या सोचते हैं आप? नमस्कार, एनवी रेडियो के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में किसी स्टूडेंट के लिए होने वाली है परीक्षा, तो किसी के लिए अग्नि परीक्षा। आखिर एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ रहे स्टूडेंट्स की अलग अलग मानसिकता के पीछे क्या कारण होते होंगे? जबकि टीचर स्टूडेंट्स हों या फिर पेरेंट्स, सबका एक ही ध्येय होता है, अच्छे नंबर, जो निर्भर करते हैं स्टूडेंट्स की साल भर की तपस्या के आधार से ज्यादा एग्जाम टाइम के दौरान उनकी मना स्थिति पर। आज विकट बन चुके इस विषय को समझने और समझाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी प्रयास किया, जिसमें समस्या से पार पाने से ज्यादा शामिल थी पालने में बच्चे से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की राजनीति। खैर, हम बात की शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रगति से, जो सीआरसी लखनऊ में साइकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर इंचार्ज भी, जिनसे बात की हमारी सहयोगी सुषमा कलंबे ने।
10th और 12th के बच्चे स्ट्रेसफुल होते हैं कि एग्जाम्स देने के लिए भी कई बच्चे डरने लग जाते हैं, एक तरीके का उनमें एग्जाम फोबिया हो जाता है।
पढ़ाई के अलावा भी इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जैसे 13 से 18 या 19 साल के बीच के, जिनको हम टीनेज बोलते हैं, इस बीच के बच्चों की हम बात करें तो अपना करियर सेलेक्ट करना, अपना रिलेशनशिप सेलेक्ट करना, अपने पीयर ग्रुप में एडजस्टमेंट करना, ये सारी समस्याएं इनके सामने होती हैं। माँ बाप इनको बच्चा समझते हैं, ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो इन सारी चीजों के साथ इनको डील करना होता है, साथ में पढ़ाई के साथ। उस स्थिति में अगर हम देखें तो बच्चा अगर पढ़ने बैठ रहा है तो पहले उसकी एक्सपेक्टेशन उसको दिखाई देती है और वो इतनी ज्यादा हाई होती हैं और कई बार अनरियलिस्टिक होती हैं उसकी खुद से अपेक्षाएं, कि वो उसको कोप अप नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपने आप से 95% लेकर के आऊँ, लेकिन जब वो देखता है अपनी पढ़ाई, जब वो देखता है अपनी समझ को, जब वो देखता है अपना कैपेसिटी को, तो उसको लगता है कि नहीं, 95 नहीं आ सकता है। तो एक गैप क्रिएट हो जाता है उसके आइडियल जो सेल्फ है, जो वो बनना चाहता है और जो वाकई है उसमें। तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और एंजाइटी पैदा होती है, और उस एंजाइटी की वजह से बच्चा घबराना शुरू कर देता है, फिर अवॉइड करना शुरू कर देता है, उसके अंदर अवॉइडेंस आ जाता है कि पढ़ाई को भी हो सकता है इग्नोर करना शुरू कर दे, अवॉइड करना शुरू कर दे। बहुत बार हमारे सामने इस समस्याओं के साथ बच्चे आते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक जितने आ रहे हैं उतना ज्यादा बच्चा सो रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसके अवॉइडेंस बिहेवियर को बताती हैं कि बच्चा उस चीज को अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो अपना आइडियल तो पा ही नहीं सकता है। दूसरा ये है कि इस समय पर बहुत सारा हमारा जो रूटीन चीजें होती हैं, जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि किस समय पर उठना है, किस समय पर सोना है, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। उसको भी बच्चे को ये ध्यान रखना है कि उसको टाइम मैनेजमेंट करना है अपना और अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को करेक्ट रखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा रात भर सोए और दिन में ही पढ़े। बहुत सारे लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, बहुत सारे लोग इवनिंग पर्सन होते हैं। तो बच्चा पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करे कि दिन पूरे 24 घंटे में किस समय उसका दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा है, ताकि उस समय अगर वो 2 घंटे भी पढ़ाई कर रहा है तो वो 4 घंटे के बराबर है या पूरी तरह से ग्रास्प हो रही है। तो ये भी आइडेंटिफाई करना है और पेरेंट्स, गार्डियंस, टीचर्स मदद कर सकते हैं बच्चों को इस चीज के लिए। साथ में अपना फूड हैबिट जो है उसको बेटर रखना है, अनटाइमली खाना खाना ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस में ऑलरेडी हम होते हैं और अपनी फूड हैबिट को हम ध्यान नहीं रखते हैं तो वो अगेन एक साइकिल क्रिएट हो जाता है प्रॉब्लम का। तो एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, अगर कोशिश करनी है कि गैप लेकर के पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना है पढ़ाई से।
स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल होता है?
देखिए, स्कूल का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है। कहीं ना कहीं वो बच्चे पर परसेंटेज को लेकर, रिजल्ट को लेकर दबाव बनाते हैं, और अगर बच्चा उस पर एक्सपेक्टेड नहीं होता है तो शायद उसी स्कूल में टेंथ में अगर पास कर रहा है प्रॉपर उसकी एक्सपेक्टेशन के स्कूल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर उसके मार्क्स नहीं है तो एलेवेंथ में उसको उसके पसंद का सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है या उसके एडमिशन भी नहीं मिलता है बहुत बार. तो ये चीजें भी एक बार बहुत बड़ा कारण बनती है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए स्ट्रेस में आने के लिए. तो डेफिनेटली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल परसेंटेज देखने के बजाय हम सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं इन चीजों.
सुना आपने, सहमत होंगे आप भी, है ना? तो चलिए इसी तारतम्य में हम अब बात करते हैं सत्य साई कॉलेज भोपाल में पदस्थ पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर श्रीजी सेठ से. क्या सोचती हैं आप?
परीक्षा के समय अगर स्टूडेंट्स और उनके माता पिता किसी तरीके का तनाव ले लेते हैं तो पूरे साल जो उन्होंने प्रभावी अध्ययन करा है वो अध्ययन जो है वो लगभग बेकार सा हो जाता है. तो मेरा सुझाव है सबसे पहले कि किसी भी तरीके की बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो खुद को तनाव में ना लें. ये आम परीक्षाओं जैसी एक छोटी सी परीक्षा है, उसमें तनाव की ज्यादा जरूरत नहीं है. क्योंकि हमें ये लगता है कि बोर्ड की परीक्षा है तो पेपर स्कूल से बन के नहीं आया, बाहर से आया, किसी और स्कूल में हम जाएंगे वहां बैठ के हमें एग्जाम देना है, तो उसको बिल्कुल भी बॉदर ना करें. उसको बिल्कुल भी ना सोचें कि हाँ जो है वो मेरे को इस ढंग की कोई अलग जगह से परीक्षा देनी है. उसे आम परीक्षा के तरीके से ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा.
रटना अच्छा है या समझ के पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा है?
बोर्ड की परीक्षा इस तरीके की परीक्षा होने लगी है आजकल, वो स्किल बेस्ड होने लगी है. आपको आपकी टेक्स्ट बुक से 100% नहीं मिलता है, आपको उसमें से 50-70% ही मिलता है. उसमें बाकी आपकी कैपेसिटी पे देखा जाता है कि आपने कितना थॉरो जो है वो स्टडी करी है पूरी. तो केवल रटकर आप 50-60% मार्क्स ले आएंगे ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है. लेकिन एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि आपका जो अध्ययन हो वो बहुत प्रभावी ढंग से होना चाहिए. कुछ बुनियादी जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा. कोशिश करें कि जो भी जितना भी परसेंट उन्होंने पढ़ाई करी है उसको 100% में करें. 50% पढ़ते हैं उसे 100% करें, 70% पढ़ते हैं उसे 100% करें. 100% पढ़ने के कारण जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो भी परीक्षा में भूल जाए, ऐसा ना करें.
आइए अब रुख करते हैं शुभांगी कृष्णन का, जो DPS भिलाई में टीचर और घर में एक माँ का रोल भी बखूबी निभा रही हैं। चलिए बात करते हैं शुभांगी जी से.
पढ़ाई तो अपनी जगह पर है ही, वो तो उनको करना ही है, बट उसके साथ में वो जैसे अगर डांस में इंटरेस्ट है तो अपना स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए डांस कर ले, म्यूजिक सुन ले, सिंगिंग कर ले, या फिर अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स अपना कर ले, तो जिससे कि उनका स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीव होगा. तो उससे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, जिससे कि उनको ये नहीं लगेगा कि वो बोर्ड एग्जाम को जो फोबिया दैट विल बी गो. अगर आपके बच्चे अगर क्लास 10th या 12th के इससे पास ऑन हो रहे हैं तो आपको एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है. आपको थोड़ा सा अगर वो पढ़ाई भी करता है तो वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है.
भिलाई से निकलकर चलते हैं नागपुर के 85 स्कूल में और बात करते हैं अरुणा मिटांगले से, जो कि टीचर है.
जब बच्चा ये सोचता है कि आई हैव टू गेन 90 अबव, आई हैव टू स्कोर 90 अबव इन एवरी सब्जेक्ट, तो उस समय बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाता है. कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, इनका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और इन्हीं बच्चों का ध्यान देना पड़ता है.
तो क्या आप समझते हैं कि इनके पेरेंट्स का भी कुछ रोल होगा इनके प्रेशर में आने का?
मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स का रोल होता है. अब जैसे ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिनके पेरेंट्स का मॉरल सपोर्ट बच्चों को होता है, जिनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं कि देखो इतना ही पढ़ो, तुम्हें जितना आएगा दैट्स ओके, उनके वो बच्चों में वो चीज़ नज़र नहीं आती. भले वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं बट वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं.
अब तक बात की हमने उन टीचर्स से जो टीचिंग के साथ साथ एक माँ के रूप में अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और शिक्षक अहमद हुसैन झुंझानी जी से और जानते हैं इनके अनुभव.
इनके स्ट्रेस लेवल कम करने का कई तरीका हो सकता है. पहला तो ये है कि अगर बिगनिंग से ही वो स्टडी करे और सिंसियर रहे तो स्ट्रेस की तो बात ही नहीं हो पाएगी. और लास्ट में ये होता है कि चीजें कवर हो नहीं पाती है और टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो उनको लगता है कि अब इतने शॉर्ट टाइम पे प्रिपरेशन कैसे होगी. तो मेरी एडवाइस तो ये रहती है बिगिनिंग से कि सिलेबस के साथ चले वो, और जैसे जैसे कवर होता है उसको रिवीजन उसी समय करें, लास्ट में उनकी ना रखें। दूसरा ये होता है कि हाफ ईयरली प्री बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसको अगर वो सीरियसली ले तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वैसे ही हाई होगा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उनको लगता है कि यस दे कैन अचीव और आगे बढ़ सकते हैं वो और अच्छा कर सकते हैं।
क्या आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में स्कूल टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इनके स्ट्रेस को कम करने में?
देखिए क्या होता है कि स्कूल का रोल तो अपना रहेगा ही और टीचर्स के रोल भी रहेंगे। टीचर्स जब भी सिलेबस कम्प्लीट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या होता है कि टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाता है, तो जहाँ पर सिलेबस पहले कम्प्लीट हो जाता है तो एटलीस्ट वो अपने सिलेबस को जानते हैं कि कितना उनका सिलेबस है कम्प्लीट हो चुका है, तो रिवीजन करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो स्कूल लेवल पे तो यही है कि एटलीस्ट उनको बाय नवंबर और दिसंबर सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए और बच्चों के पास में इनफ रिवीजन करने के लिए टाइम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, प्री बोर्ड एग्जाम्स को हम लेते ही हैं तो प्री बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट को पूरा मिरर इमेज दिख जाता है कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, उनकी तैयारी कैसी है। दूसरा ये होता है कि अगर स्टिल अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं वो काफी कमजोर है या वीक है या प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ये अपने आप को वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर रिवीजन क्लासेस हो सकती हैं, लिया जाता है। और प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 जितने पेपर्स उनको देंगे प्रिपरेशन के बाद, हर एक प्रिपरेशन के बाद, तो उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल अगेन हाई होता है कि यस दे आर अचीविंग, दे आर इम्प्रूविंग।
समता अग्रवाल, जो कभी भोपाल के जाने माने स्कूल में टीचर हुआ करती थी, आज वह सुबह से शाम तक घर में ही 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी कराती हैं।
हमारे विजन क्लियर होने चाहिए, हमारा बच्चा किस क्षेत्र में कहाँ पे क्या अच्छा कर सकता है। वो पेरेंट्स अगर सोचने लग जाए, उसकी क्षमताओं को बेटर तरीके से देखने लग जाए, तो मेरे ख्याल से शायद ये चीज, ये जो टेंशन है, ये जो डिप्रेशन है, ये काफी हद तक कम हो सकता है।
स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर, कहीं ना कहीं सभी लगभग एक सी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, जिनको थंब रूल के आधार पर या फिर किताबों में ढूंढा नहीं जा सकता। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि इनका कोई समाधान है ही नहीं। मिसेस गीता, इनके दोनों बेटे IITN हैं, हिंदुस्तान के नंबर वन इंस्टीट्यूट से। सुनते हैं उनके सुखद अनुभव।
मेरा बड़ा बेटा, उसने IIT मुंबई से पास आउट किया BTech में। जब वो 12th में था तो मुझे अच्छे से याद है कि वो मुझसे कहा करता था, सिर पे गोद में सिर रख करके हमेशा रोता और कहता था, मम्मा अगर मेरा IIT में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे स्ट्रेस भी होता है। मैंने उसके लिए बहुत प्यारा सा सोल्यूशन निकाला था। मैंने उसे एक डायरी दी और कहा कि बेटा आपको जो भी लगता है जिस मोमेंट पे, जैसी भी फीलिंग आती बस इसे लिख लो। और बाद में बच्चे ने बताया मुझे कि बहुत ज्यादा इस चीज ने हेल्प किया। दूसरी चीज मैं उससे कहती थी, रात को सोने के पहले आराम से मेडिटेशन करो, फोरहेड के बीच में, अपने माथे के बीच में देखो, उस ऊर्जा को फील करो जो आपके चारों तरफ वायुमंडल में है। ये भी उसने बाद में मुझे बताया कि बहुत मदद किया। ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और हमेशा बच्चे के पास में रहिए और बच्चे को कभी भी एहसास मत होने दीजिए कि आप उसके साथ नहीं है। बच्चे के साथ सबसे अच्छा ये वक्त होता है जब आप उसके सिर पे हाथ फेरें, उसके माथे को चूमें, उससे कहें कि सब कुछ सही होना है लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात जो आप बार बार उससे बोलेंगे, उसे इतना अच्छा फील होगा कि कभी वो अपने आप को स्ट्रेस में अगर महसूस करता भी है तो आपका हाथ प्यार से सिर पे फेरना और मेडिटेशन करवाना, डायरी लिखवाना, ये सब चीजें स्ट्रेस रिलीफ के छोटे छोटे बूस्टर डोजेस होते हैं जो रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से जो आप अपने बच्चे को बेहतरीन समझ करके जो भी आप सुझाव देते हैं वो बहुत ज्यादा काम करती है। अपने बच्चे को समझिए और ये बात अच्छे से जान लीजिए कि खुदा ने, भगवान ने कोई भी चीज वेस्ट नहीं बनाई है। हर एक इंसान को एक पर्पस के साथ भेजा है इस दुनिया में, और आपके अपने बच्चे के पास भी कोई ना कोई पर्पस है। बस ये है कि ये सब छोटी छोटी जो इम्तिहान जिंदगी में होती है वो उसे बहुत मजबूत बनाने के लिए होती है। ये बातें आप जितना ज्यादा अपने बच्चे के साथ करेंगे उसका मॉरल बूस्टअप उतना ज्यादा होगा और वो हर इम्तिहान में आगे बढ़ जाएगा।
जान है तो जहान है, स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम और पढ़ाई लिखाई के लिए स्वस्थ मन कितना जरूरी होता है, जानते हैं भोपाल के जाने माने डॉक्टर भुवनेश गर्ग से।
बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अनुसार उन पर लोड डालें, और जिस तरह से उनको जिस चीज में समझ आता है उनको उसी की तरफ प्रेरित करें। यहाँ भेड़ चाल की तरह नहीं कि उनको किसी भी चीज में पूरी लागत से पूरी क्षमता से झोंक दिया जाए और वो उसको पूरा ना कर पाए। दूसरा, शारीरिक रिक्वायरमेंट भोजन की, एनर्जी ड्रिंक्स की, जिसमें चाय कॉफी और इस तरह के सूप और गर्म पदार्थ हम घरों में लगातार बना के दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त समय पर जब अतिरिक्त लोड पड़ता है तो बच्चों को इन चीजों की बहुत जरूरत होती है, और हर 2-3 घंटे में एक बार इनको इस तरह की चीजों की जरूरत होती है कि जिससे दिमाग को ग्लूकोज एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे और वो उसके लिए अच्छे मन से अच्छे समय से अपने आप को पढ़ाई में प्रेरित करके रख सकें।
ये तो थे बुद्धिजीवियों के विचार और अनुभव। अब बात करते हैं उन लोगों से जिनके लिए आप और हम चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यशस्वी कृष्णन से, जो कि डीपीएस भिलाई में 11th की स्टूडेंट हैं।
एक तो सबसे पहले ये स्ट्रेस रहता है कि दूसरे ज्यादा पढ़ रहे हैं और हम कम पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी बात यह आती है कि एक तो हम पढ़ लेते हैं तो हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक हम पेपर नहीं देके आते, तो एग्जाम से पहले एक उसकी भी टेंशन होती है कि भाई एग्जाम कैसा जाएगा कैसा जाएगा कैसा जाएगा। और फिर उसके बाद आता है कि एग्जाम के बाद के रिजल्ट, हम एग्जाम देने के पहले ही रिजल्ट प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट कैसा होगा। तो ये 3 चीजों का मेनली सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। टीचर्स मेनली हर एक एक दिन में डराते रहते हैं कि भाई अब 10 दिन बचे एग्जाम के लिए, अब 9 दिन बचे, अब 8 दिन बचे हैं, तो उससे एक और स्ट्रेस पैदा होता है कि भाई हाँ दिन कम होते जा रहे हैं, एग्जाम पास आती जा रही है। तो हाँ, टीचर्स का भी हाथ होता है स्ट्रेस दिलवाने में।
तो ये स्ट्रेस आपके लिए अच्छा होता है या बुरा होता है?
एक तरीके से अच्छा होता है, क्योंकि जब तक स्ट्रेस नहीं आएगा डर नहीं आएगा, जब तक डर नहीं होगा पढ़ाई के लिए आप पढ़ने नहीं बैठोगे सीरियसली। तो एक तरीके से अच्छा है, बट जब वो आपको रूल करने लग जाता है पढ़ाई के समय तब बेकार होता है।
बिल्लाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल भोपाल में 10th की स्टूडेंट हैं हेतल गुप्ता। एग्जाम और स्ट्रेस को लेकर उन्होंने भी कुछ इस तरह से अपनी बात रखी।
कब से आपके दिमाग में ये चीज़ चलना शुरू हो गई कि मुझे अपना टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए और मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि मेरे अच्छे मार्क्स आए?
मैंने तो एग्जाम स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 26 डेज पहले अपना टाइम टेबल सेट करा है, बट ये बहुत गलत है, लोगों को और पहले करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन की बहुत जरूरत होती है, रिवीजन के लिए जितना टाइम मिले उतना कम होता है।
फिर भी क्या आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या आपने सोचा है?
मैंने दिन में डे टाइम में मैं 6 आवर्स पढ़ती हूँ और रात को मैं यूजुअली स्ट्रेच करके 7-8 आवर्स पढ़ लेती हूँ। और आई थिंक लोगों से इंटरेक्ट करना भी जरूरी है, घर के अंदर बंद होके नहीं पढ़ाई हो पाती, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है वो थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है तो उसमें मन नहीं रखता पढ़ाई में। तो मैं डे टाइम में पढ़ती हूँ, रात को भी पढ़ लेती हूँ, और शाम को मैं यूजुअली बाहर वॉक पे जाती हूँ, एंड उसके साथ साथ योगा भी करती हूँ जिससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़े।
ये एक पहल थी एनवी रेडियो की। हम आप सभी के आभारी हैं जिन्होंने समय निकाल कर अपने विचार प्रकट किए और हमारे इस एपिसोड को सुना। इस मसले पर भले ही आज पूरा हल निकले या ना निकले, लेकिन आने वाले समय में समस्या और समाधान को तवज्जो तो देना शुरू कर ही दिया जाएगा। किसी भी समस्या और विषय पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसे हम एनवी रेडियो के अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9425013850। आप हमें NVMP तरुण पर ट्वीट कर सकते हैं या फिर tarun.nvmp@gmail.com पर ईमेल। मुझे दीजिए इजाजत, इंतजार रहेगा हमें आपके सुझाव और विचारों का। जुड़े रहिए हमारे साथ, एनवी रेडियो है आपके साथ।